थोड़ा सा इनका खुलासा दे देती हूँ। देखिए, माल के खर्च की सबसे खूबसूरत सूरत क्या है? सदका। कि मुसलमान अपनी जरूरत पे भी खर्च करे, वो भी सदका है। आप खाना खाते हैं ना, आपके शौहर ग्रोसरी लेकर आते होंगे, वो सदका है। आपके शौहर आपके मुंह में एक लुकमा डाल देंगे, वो भी सदका है। आप इतने प्यार और मोहब्बत से, माँ के जज्बात से मामूर होकर जो खाना पकाती हैं, ये आपका सदका है। आप खाना पकाते हुए जो वक्त लगा रही हैं, ये इंशाल्लाह सदका है। इसी सदके का हाल सिर्फ आपके अपने घर और अपने बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि इसका हक दूसरों तक भी है। तो पहली सूरत क्या है कि माल को जरूरियात पे लगाएं, अपनी लगाएं, फिर उसके बाद अपने साथ नीडी देखें, घर के अंदर मुलाजिम हैं, नेबर्स हैं, पाकिस्तान में आपके गरीब रिश्तेदार हैं, उनकी टेक केयर कीजिए। पता चले वो बेचारे खा ही नहीं पा रहे, उनके पास रोटी पानी नहीं, वो रोजे कैसे रखें, वो ईद कैसे करें। अच्छे तरीके से आप अपने माल को खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए, ये पहली सूरत होती है। इसी में नीडी भी आ गए, उनको दीजिए, सदका भी आएगा, जकात भी आ जाएगा। अब ये फर्स्ट बेस्ट थिंग सूरत है। इसके बाद ये है बेस्ट फॉर्म, अपनी जरूरत, दूसरों की जरूरत, और इसी के अंदर जो लोगों की इल्म की भूख है तो उसमें इल्म पे खर्च करना, उसी में लोग दीन इस्लाम के लिए खर्च करना आ गया। इसके बाद एक वर्स्ट सूरत है, बिल्कुल बुरी, सबसे बैड, जिसको सूद कहता है इस्लाम, लेकिन आज के दौर में बड़ी इंटरेस्टिंगली कहूंगी कि लोग उसको इंटरेस्ट कहते हैं, ये वर्स्ट है। वो क्या होता है? वो जहां बात आएगी तो बात थोड़ी सी करेंगे। तीसरी सूरत होती है उधार की, कर्ज की। एक शख्स जब सदका लेना नहीं चाहता, सूद ले नहीं सकता, तो फिर कर्ज ले लो। अब तीन सूरतें होंगी कर्ज की। कर्ज भी आ गई कि कर्ज ले लो भाई, मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी, दे दिया, ये भी हो गया। अब चौथी सूरत क्या बनती है कि कोई कर्ज भी नहीं आपको देता, वो कहता है मुझे तो नहीं पता आप मुझे देंगे कि नहीं, मैं आपको जानती नहीं। तो आप अपनी चूड़ी उतार के या घड़ी उतार के या फोन दे के कहते हैं ये मेरा फोन प्लेज रख लो, ये फोन मेरा मॉर्गेज में रख लो, तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। जिसको आप और मैं आज यहाँ मॉर्गेज के नाम पे कहते हैं, लेकिन इस्लाम उसको रहन कहता है। और यहां से लेकर आखिरी रुकू से पहले पहले अब हम ये चार चीजें पढ़ने लगे। पहली चीज है भी तवील और खूबसूरत तरीन है कि जिसको एक दफा अल्लाह की बड़ाई की समझ आ गई, जिसको यकीन हो गया कि रब इतना प्यारा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर उसके रास्ते में खर्च करना मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है मसलुल लजीना युनफिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे कि, सोचिए अब आप इमेजिनेशन में एक तस्वीर लाइएगा, हब्बतन अंबतत सब सनाबिला फी कुल्लि सुंबुलतिन मियतु हब्बा, एक दाना बोया जाए इससे सात बाले निकले और हर बाल में 100 दाने हो। इसी तरह अल्लाह ताला जिसके अमल को चाहता है फरावानी अता फरमाता है, क्योंकि वो फराख दस्त भी है और अलीम भी है। ये मंजर तो दुनिया में बीसियों बार सभी ने देखा होगा ना, कि जमीन को बस एक दाना आप देते हैं और चंद महीनों के बाद वहां फसल खड़ी होती है जिसमें हजारों दाने हैं। अल्लाह ने बता दिया कि जमीन क्या है? मखलूक, बेजान। जब मखलूक और बेजान को तुम एक देते हो तो वो हजारों पलटाती है, तो उसके खालिक और मालिक को तुम एक दोगे तो वो कितना पलटाएगा। ये है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, सबसे बेहतरीन चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च करना फी सबीलिल्लाह। ये जो लफ्ज़ फी सबीलिल्लाह हमारे यहाँ को इतना पसंदीदा तो नहीं है, क्योंकि वो सड़कों के किनारे एक सबील लगी होती है, टूटी फूटी सारी, उस पर फफूंदी भी चिपटी होती है, सबील लगाई होती है पानी की, फी सबीलिल्लाह। फी सबीलिल्लाह गरीब को दे दो और हाथ में कासा होता है जिसमें इतनी मक्खियां बैठी होती हैं। हालांकि अगर आप फी सबीलिल्लाह लफ्ज़ को देखें ना, इतना खूबसूरत लफ्ज है। सबील अरबी जुबान में सुबुल से है, रास्ते को कहते हैं। ये जो आपका कोर्स है ना हमारे साथ सबीलुल जन्ना, वो भी यही है, और सुबुल सलाम जो हमारा इंटेंसिव कोर्स है वो भी इसी का, एक साल का। सुबुल सबील, दो को मिलाने वाली। अब ये देखिए, ये बुकमार्क है, ये रास्ते की तरह ना, आपको दूर से ये एक रोड दिख रही होगी ना, की रोड है। अब एक इधर से ये मैंने पकड़ लिया, अब ये इधर से गिर रहा है, मैं चाहती हूँ कि कोई इधर से भी पकड़े ताकि ये मजबूत। अब ये किसी और का हाथ है, मेरे हाथ को इस हाथ से किस चीज ने जोड़ा? इस रास्ते ने। अब आप सोचिए, फी सबील इलाके एक तरफ आपका हाथ है, इधर अल्लाह का हाथ है। हर वो काम, अमल, वक्त, माल, पैसा, दौलत, घर आपके, आपकी गाड़ियां, जो आपको अल्लाह से मिला दें, वो सबील इलाके। अब मुझे बताइए इसका दायरेकार कहां तक गया? मेरा और आपका लिखिए खुद से, क्या मेरा घर फी सबील इलाके इस्तेमाल हो रहा है? क्या मेरी गाड़ी फी सबील इल्लाह इस्तेमाल हो रही है? यह अब तदब्बुर के नुक्ते सबसे मुश्किल होंगे आपके लिए, क्योंकि इसी पे तो दिल की आंखें खुलती हैं। आप और मैं ये एक्टिविटी कर लें, मेरी कौन सी चीज फी सबील इल्लाह इस्तेमाल हो रही है? अल्लाह को हमारे ना घरों की जरूरत है, ना गाड़ियों की, ना माल की, ये हमें जरूरत है। जब सच्चा ईमान अंदर आता है ना, तो तड़प लग जाती है कि अल्लाह कबूल कर ले। साहबे कराम माल ले ले के फिरते थे कि अल्लाह के नबी इसको कबूल कर लीजिए। उनको पता था कि जो हमारा अल्लाह के रास्तों में लग रहा है वो खर्च नहीं हो रहा, वो कबूल हो रहा है, वो प्रिजर्व हो रहा है। बस आप देखिए, अब सब यहाँ आए, और मैंने आके जो अटलांटा का सेटअप देखा है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे ही है ना, आप में से कुछ साथी, जैसे सिस्टर, आपका नाम सादिया, हम आपके घर गए थे, 1 घंटा प्लस इनका घर है, और ट्रैफिक में क्लॉक हो जाए तो आप 2 घंटे भी लगेंगे। और मुझे यकीन है, और ये सिस्टर सुबह से बैठी हुई है माशाल्लाह, तो ये अपने घर से मेरा हाल है कोई 8:30-9 बजे निकली होंगी। बता सकती हैं आप, निकली ना? अब आप मुझे बताइए कि जब निकली तो उससे पहले जागी भी तो होंगी ना। सुबह 7 बजे से लेके अब तक ही आई, कि इनका वहां से चलना, रास्ता तय करना, इनकी गाड़ी की गैस भी लगी होगी, और मुझे उम्मीद है ये अकेली नहीं आई होंगी, अपनी दोस्तों को लाई होंगी। ये सब क्या इनका फीस है? आप कहते हैं माइलेज कितना है, अल्लाह कहता है उसको प्लस नहीं, मल्टीप्लाई करो 70 के साथ। तो मुझे बताइए किसका फायदा, करीब से आने वालों का कि दूर से आने वालों का? ज्यादा अपनी एफर्ट लगाने वालों का कि कम लगाने वालों का? इसीलिए ये आपके वॉलंटियर्स जाते ही नहीं है यहाँ से, ये अक्लमंद बहुत हो गए। आप तो चले जाएंगे अभी थोड़ी देर में, ये इनको धक्के दे के निकालने वाली बात है, जाते ही नहीं है। बहाने बहाने से काम, ये रोज आपके लिए सेटिंग चेंज करते रहते हैं कि हम किसी बहाने इधर है। कल क्यों नहीं जा रहे थे, क्या वजह? कहते आज आखिरी दिन है रमजान से पहले, तो और काम कर ले। ये कौन सोच देता है? कोई दुनिया का मोटिव इतना बड़ा नहीं है जो मुझे और आपको अपना वक्त, सेहत, वजन उठाना, चीजें रखना, खर्च करना, भूखे रहना, कितनी भूख प्यास रहनी पड़ती, कभी तो बहुत ही खाना पड़ता है कि खा लें खाना आ गया खराब हो जाएगा, और कई दफा नहीं खाना मिला तो चुपके से सबर करें। ये अल्लाह के रास्ते के सबर है, और ये सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने जब खंदक खोद दी थी, कई घंटे भूखे रहे, एक नहीं 2 पत्थर बांधे थे पेट पे, तो दीन फैला ना। उस दिन अगर वो खंदक ना खोदी होती और वो बीच में डगिंग ना हुई होती, तो कुफर ने तो उसी दिन इस्लाम को खत्म करना था जो आज तक कोशिशों में। लेकिन याद रखिए, ये मेरे और आपके अपने अंदर से जब ये चीजें उठती हैं, और इसको उठाने के लिए आपको मुझे इस दर्द की जरूरत है कि अपने साथ, अपनी दोस्तों, अपनी साथी जो आपके साथ है, उनको लेकर आए। देखिए माशाल्लाह पार्किंग लॉट बाहर बहुत बड़ा है, फिर भी मैं सुबह जब देखती तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हर गाड़ी में एक नहीं, कम से कम 5 लोग आए हों। नियत करें आज से, अगर जाके थोड़ी देर, आधा घंटा भी आप अपना वक्त फोन पे लगाती हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, लिखिए क्या सुना, अपने जेम्स दीजिए, अपनी फीलिंग शेयर करें। देखिएगा 2-4 आपको खुद ही फोन कर लेंगी, कल मुझे भी ले जा। और जिसको जरा से इंटरेस्टेड देखते हैं आप, उनको लेकर आए। क्यों? कि जब दीन की खेती तैयार करनी होती है ना, तो याद रखिए दीन की खेती इंसानों से तैयार होती है, बिल्डिंगों से नहीं होती। लोग कहते हैं बिल्डिंग है आपके पास, तो क्या बड़ी बात है, सूखी बिल्डिंग और ज्यादा खाने को मांगेगी। लोग, लोग, अल्लाह के नबी ने लोग तैयार किए थे। आज हमारे दीन में कुछ दीनदारों की सोच क्या, जगह बनाओ, पहले इदारे बनाओ, बिल्डिंगे बनाओ, चंदा जमा करो। होता क्या, 6-7-8 साल की मेहनत और बहुत सारे कर्ज के साथ मस्जिद तो बन जाती है, अंदर नमाजी नहीं रहते, लोग पुट ऑफ हो चुके होते हैं, थक गए हम आपके लिए चंदे मांग के, खत्म हो जाओ भाई, दरख्त के नीचे बैठ जाओ, लोग बनाओ। आपकी मेरी सबसे बड़ी ताकत ह्यूमन रिसोर्स है, और सच बताएं इसमें मुसलमान आज खुद कफील हैं कि नहीं? अब तो वेस्टर्न कंट्रीज ने भी वो जो सोशल हेल्प देते हैं वो देनी छोड़ दी, कि जो बच्चों का पैसा है वो मुसलमानों के घर जा रहा है, जितने बच्चे उतने पैसे, इनका तो 1-2 बच्चे, तो हमारे घरों में तो 4 से कम हो तो हमारी इज्जत ही नहीं बनती। आप अपने मुसलमान बच्चे पैदा कर लें, कुछ नहीं कर सकते, बच्चे पैदा करें और उनकी अच्छी तरबियत करें। मैं औरतों को कहती हूँ कि आप तो बच्चे पैदा करने वाली मशीन है, आप कुछ ना करें, आप कुरान ना पढ़ाएं, कुछ ना करें, आप जाएं घर जाएं और अपने घरों को सजाएं और बच्चे पैदा करें। कुरान पढ़ी हुई माओं के तो 10-10 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि आप वो माँ हैं जो बच्चे पैदा करेगी। हमारे साथ ही ऐसे शेयर करते हैं, अब वो अल्लाह के हुक्म से होता है बच्चा जल्दी हो या देर से हो। कुछ लोग कोर्स में होते हैं फिर प्रेग्नेंट होते हैं, पता चला 10 साल बाद प्रेगनेंसी हो गई, तो वो कहते हैं कि पता नहीं ये कैसे हो गया, हमने तो सोचा नहीं। भाई अल्लाह ने सोचा है कि अब आपको एक मुस्लिम माँ वाला बच्चा दिया है। तो बहरहाल अब ये बातें तो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर वक्त बहुत कम हो जाता है, लेकिन इस दर्द को पैदा कीजिए। आज मैंने और आपने हर तरह से जो कर सकते हैं करना है, जो अल्लाह के रास्ते में दे सकते हैं कर सकते हैं वो करें, वक्त दे सकते हैं। इस वक्त इस्लाम को मेरे और आपके वक्त की जरूरत है, फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जितनी खैर आप लोगों को देंगे वो सब आपको पलटती है। लोगों की भूख प्यास बुझाएंगे उससे भी फायदा होगा, लेकिन उनकी अल्टीमेट भूख और प्यास को मिटाने की जरूरत है, उनको जहन्नुम से निकालकर जन्नत की तरफ ले जाना है। और मुसलमान जमीन के टुकड़ों के लिए भी नहीं ये काम करता, वो सिर्फ इसलिए करता है कि लोगों के अंदर से जहालत खत्म हो और वो जहन्नम की बजाय जन्नत की तरफ चल पड़े। अल्लाह ताला कहता है युदाई फूली मई यशा, तुम अपनी हैसियत से अपना वक्त दे रहे हो, अपना माल दे रहे हो, जबकि अल्लाह अपनी शान और अपने जमाल और अपने कमाल के साथ उसको पलटाएगा। और जब अल्लाह पलटाएगा तो तुम तो सोच भी नहीं सकोगे कितना दिया। बाज दफा कोई भी बहुत ही गरीब सा रिश्तेदार है, वो बहुत ही अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा भी करेगा, लेकिन वो कोई तोहफा किसी अपने अमीर रिश्तेदार को देता है क्योंकि वो उसकी हैसियत इतनी थी। लेकिन जब वो अमीर रिश्तेदार फिर उसको उसके जवाब में चीज देता है तो वो कहता है इसको तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, मैंने तो कभी ख्वाहिश भी नहीं की थी ये खरीदूं। तो ये तो दो इंसानों का मामला है ना। जब आप और मैं अल्लाह के रास्ते में ये टूटी फूटी कोशिशें करेंगे ना, जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ टूटी फूटी हैं, तो जब अल्लाह इसकी पलटाएगा तो उसका सबसे हल्का दर्जा आपको जो मिलेगा ना, वो तो मैं आपको पूरी यकीन से कह सकती हूँ, खुशी, सुकून, डिप्रेशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, आपकी रातों की नींद खुल जाएगी, आपको ट्रैंक्विलाइजर्स नहीं खाने पड़ेंगे, आपको साइकाट्रिस्टों को जाकर 100-100 200-200 डॉलर पर घंटे के नहीं देने पड़ेंगे। यही मिल जाए तो क्या बुरा है, बाकी कुछ भी ना अगर मिले तो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपने रास्तों में भागने वाला बना दे, अपने रास्तों से भागने वाला ना बनाए। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान भी नहीं जताते ना दुख देते हैं, इनका जर इनके रब के पास है और इनके लिए किसी रंज और खौफ का मौका नहीं, एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर जरा सी चश्म पोशी इस खैरात से बेहतर है जिस सदके के बाद दुख दिया जाए। अल्लाह बेनियाज और बुर्दबारी इसकी सिफत है। सिर्फ उम्मत मुस्लिमा स्माइल देना सीख ले, अच्छी बात सिखा दे, लोगों को गुड वर्ड्स कह दे, नहीं दे सकते कुछ और तो अच्छा मशवरा दे दे, अच्छी तरह से किसी को अच्छी बात बता दे, अल्लाह ताला उसको भी कबूल करेगा। ए ईमान लाने वालों, अपने सदकात को एहसान जतला कर और दुख देकर इस शख्स की तरह खाक में न मिलाओ जो अपना माल महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और न अल्लाह पर ईमान रखता है न आखरत पर। इसके खर्च की मिसाल ऐसी है, इमेजिनेशन में एक लाइएगा मिसाल, जैसे एक चिटान थी जिस पर मट्टी की तह जमी हुई थी, इस पर जब जोर का मी बरसा तो सारी मट्टी बह गई और साफ चट्टान ही की चट्टान रह गई। ला यक़दिरून अला शय्यिन मिम्मा कसबू, ऐसे लोग अपने नजदीक खैरात करके जो नेकी कमाते हैं इससे कुछ भी इनके हाथ में नहीं आता, और काफिरों को सीधी राह दिखाना अल्लाह का दस्तूर नहीं। बखिलाफ इसके जो लोग महज अपने माल अल्लाह की रजा जोई के लिए दिल के पूरे सुबात और करार के साथ खर्च करते हैं, इनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे किसी बुलंद सतह पर एक बाग हो, अगर जोर की बारिश हो जाए तो दुगना फल लाए और अगर जोर की बारिश ना भी हो तो एक हल्की फुहार ही इसके लिए काफी हो जाए। तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह की नजर में। इसमें क्या मैसेज उम्मत मुस्लिमा के लिए, बहुत कुछ नहीं भी कर सकोगे ना, जितना भी करोगे अगर उसमें इखलास होगा, प्योर होगा, तो अल्लाह ताला उसको काफी करेगा। बाद शबनम का कतरा किसी की प्यास बुझा देता है समंदर के पास खड़े होने की निस्बत। समंदर है लेकिन नमकीन है, एक कतरा आपके मुंह में नहीं जाएगा। तो याद रखिए कि आप और मैं अपने रिसोर्सेज को ना देखें कि क्या दिया अल्लाह ने, कम दिया या ज्यादा दिया, बल्कि तौफीक को देखें, इखलास को देखें, क्या कर सकती हूँ आज जाकर। आपने पूरा वक्त जितना भी आपके पास सोचने का मौका मिला ये सोचिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं फी सबीलिल्लाह क्या करूं कि मेरे लिए कुछ आखरत का तोशा बन जाए। और फिर आप देखिए कि अल्लाह के नबी के पास अज़वाजे मुतहरात आती थी और आपके पास सहाबियात आती थी। एक मौके पे एक और सहाबिया ने तो हद ही कर दी, जंग पे जाने का वक्त है, लोग अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं कि इस्लाम के लिए निकल रहे हैं तो हमारा भी हिस्सा डले, तो वह एक गोद का बच्चा उठा के अपना ले आई। अल्लाह के नबी मुझे कुछ और नहीं मिला कि मैं आज आपको देती हुई अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए, ये मेरा बच्चा ले जाए। भाई इस बच्चे को क्या करेंगे हम, जंग में जा रहे हैं, बच्चे का क्या काम। कहा जब आपकी ढाल टूट जाएगी तो मेरे बच्चे को अपनी ढाल बना ले, जो तीर आप पे पड़ना था वो मेरे बच्चे के सीने में पड़े ताकि कल मैं कह सकूं कि मैंने अल्लाह के रास्ते में अपना बच्चा दिया। आज ये जज्बे किधर है, आज वो माएं किधर है, माएं हैं, जज्बे भी हैं वो अंदर दबे हुए, ये कुरान का पानी उनको इंशाल्लाह उभारेगा। अल्लाह से दुआ करें कि हमारे दिलों में इस्लाम की ये तड़प आए। एक और औरत आती है, बालों की चुटिया काट के ले आई, इसको क्या करूं। कहा अल्लाह के नबी जंग में जा रहे हैं, जब आपके घोड़े की रस्सी टूट जाएगी ना तो इस मेरे बालों की रस्सी बट के लगा दे ताकि मेरी ये बाल अल्लाह के रास्ते में काम आ जाए। आज ही जज्बे दबे हुए छुपे हुए अंदर मौजूद है माशाल्लाह, सिर्फ इस कुरान के पानी की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें इसके अंदर मददगार बना दे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि इसके पास एक हरा भरा बाग हो, سب چاہیں گے. من نخیل و عناب, نہروں سے سیراب, کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا. اور وائن اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے بھی ہوں, ابھی کسی لائق بھی نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یہ ہے وہ شخص کہ جو زندگی بھر نیکیاں کرتا رہا لیکن آخری عمر میں نیکی چھوڑ دی اور اس کا انجام سوء ہو گیا. اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. اے لوگو, جو ایمان لائے ہو, جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے, یعنی عشر کی بات ہو رہی ہے, اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں, اب یہ مثال سنتے ہو ذرا آپ بھی سوچئے گا کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کرتے, ایسا نہ ہو کہ اس کے راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرو. حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے دے تو تم ہر کسی سے لینا گوارا نہ کرو, الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم آنکھ میچ لو. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. اللہ کے راستے میں کیسی چیز دیتی ہوں؟ ماسی کو جوڑا دیں تو اس سے پہلے بیل بھی اتار لی, بٹن بھی اتار لیے, دوپٹہ بھی رکھ لیا, نچا پچا جوڑا دے کر کہتے ہیں اللہ سے برا اجر ملے. ایسی کیفیت تو نہیں. تب دینا ہے جب اس کا رنگ بھی ختم ہو چکا ہو. پھر کہتے ہیں روز تو جوڑا مانگتی ہو, ابھی پچھلے ہفتے تو دیا تھا. بھئی آپ کا جوڑا اتنا پھٹا پرانا دیا, اس بیچاری نے تو دن بھر کام کرنا ہے, اس کو اس میں کیا ملا ہوگا؟ ایک تو یہ ذاتی خرچ ہے, چلیں اس میں تو چونکہ لوگ سامنے ہوتے ہیں تو ہم دے ہی دیتے ہیں, اچھا ہی دیں گے. ماسی نے چار گھروں میں جا کے بتانا بھی ہے نا کہ یہ باجی بہت دیتی ہے, اور یہ تو باہر سے آتی ہے تو بہت ہی دیتی ہے. لیکن جب ہم خالصتاً اللہ کے لیے دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ میری آنکھوں کے سامنے ایسی مسجدیں ہیں کہ جہاں ٹوٹا پوٹا فرنیچر پڑا ہوا ہے, چار چار فریج پڑے ہوئے ہیں اور اس میں ایک بھی نہیں کام کرتا. کیا کہتے ہیں, جس کا جو چیز خراب ہوتی ہے لا کے مسجد میں رکھ جاتے ہیں, بابا چاچا جی اس کو بیچ لیں, اس کو رکھ لیں. کیا ہماری نظر میں اللہ کا دین ایسا؟ آج ہمارا دین کیا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہاں ٹوٹی ہوئی کرسیاں ہوں, پھٹے ہوئے کارپیٹ ہوں, بریانی کی خوشبو آتی ہو جب سجدہ کرے آؤں؟ یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ کے راستے میں بہترین چیز دیں, پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیا دیتا ہے. اللہ کہتا ہے تمہیں کوئی دے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ سوچئے, جب کوئی چیز دیتی ہوں تو کیا سوچتی ہوں, اگر کوئی مجھے دے تو کیسا لگے؟ یہ نقطہ ہے غور کا, تدبر, غور. آج میں اللہ کے راستے میں جو دیتی ہوں, کیا کل کوئی مجھے دے تو اچھا لگے گا؟ کہ یہ تو نہیں کہ باسی کھانا دے دیں. اگر کھانا بچے آپ آج ہی دے دیں. اب ان ملکوں میں رہتے ہوئے یہ باتیں آپ کو میری ویلٹ نہیں لگیں گی, کیونکہ یہاں ہم دے دیں کس کو, لیکن اپنے ملکوں میں بھی بہت سارے لوگ یہ سن رہے ہیں اللہ کے حکم سے. بھئی کھانا بچ گیا آپ کا, فریش کھانا پکا, آپ کی کچن والی نہیں بنایا, تھوڑا بچا, آپ کو پتا ہے کہ دوسری دفعہ کوئی نہیں کھاتا گھر میں, آپ اس غریب کو بھی فریش کھانا دے دیں. اس کو رکھ کے دو دن کے بعد کہیں گے وہ گرم کر لو دو دن کی دال, تو آج ہی دے دیجیے. کئی غریب فقیر بڑے میں معاشرے میں آپ ان کو دے دیجیے. لیکن ہم کیا سوچتے ہیں, نہیں یہ سر پہ چڑھ جائیں گے. کوئی ہے تصور کہ پیزا ہٹ سے 1500 روپے کا پیزا آئے اور اس کا ایک پیس نکال کر ہم ڈرائیور کو دیں گے جو اپنے بچے کے سے کھا لو؟ ہم کہتے ہیں ہاں پیزا دو, ان کا دماغ خراب کرو. دیں گے کیا وہ اگلے دن فریج میں جو آپ کے بچے کے کٹ کٹ کر کے کھائے ہوئے کنارے چھوڑے ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑے جو آپ نے اس کو اتنا ڈال دیا کھا نہیں سکے, ٹکڑے ہوئے کترے ہوئے, کہتے ہیں جو اپنے بچے کو کھلا لو. یہ ہے المیاں, جیسا میرا دل ویسا میرے ملازم کا دل, جیسی میرا ٹیسٹ اس ویسا اس کا. آپ نے فرمایا کہ جب کوئی تمہارے لیے کھانا پکائے تو تم اس میں سے تھوڑا سا ایک لقمہ تو اس کو کھلا دو, خوشبو تو اس کو بھی آئی ہوگی. یہ فرق مٹانے کی ضرورت ہے. اور جب اپنی اوقات یاد آتی ہے نا کہ میرا اللہ کی نظروں میں کیا مقام ہے, میں صرف اس لیے بیگم صاحبہ بن گئی کہ میرے گھر کے باہر لینڈ کروزر کھڑی ہے, میرا بنگلہ چار کنال پہ, تو کیا بڑی بات ہے چار کنال پہ؟ اللہ کی نظروں میں اللہ کو پتا کہ آپ کس جگہ پہ اور وہ آپ کی غریب ماسی کس جگہ پہ. تو ہمیشہ اپنے آپ کو لو پروفائل پہ رکھیں, شیئرنگ کیئرنگ. اللہ کہتے ہیں تم جو دو گے وہ سوچو کہ تمہیں دینی پڑے گی, تو پھر کھاؤ گے کہ نہیں. آج میں اور آپ خود اپنے اوپر لے کر سوچیں کہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں یا جو چیزیں اللہ کے راستے میں بھیجتے ہیں, کیا ہم اللہ سے وہ واپس لینے کو تیار ہیں؟ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے, مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے, جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے, اور جس کو حکمت ملی سے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. یہاں حکمت سے کیا مراد ہے؟ مال کو کہاں خرچ کروں؟ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری باتیں ہی منی کی ہیں. انسان اپنی سمجھ اور فہم اور فراست سے تھوڑا خرچ کر کے زیادہ اجر لے سکتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں اس بارے میں. آپ دیکھیے کہ آپ نے کسی کو ایک وقت کھانا کھلایا. ویسے ہم دیتے ہیں تو ہمیں اس وقت فیلنگ نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن اگر अच्छी नीयत है तो होगा क्या, किसी को आपने खाना खिलाया, खाना पेट में गया, मैदे में गया, 6 घंटे के अंदर मैदे से वो आगे अंतड़ियों में पहुंच के कुछ घंटे में खारिज, उससे कुछ एनर्जी मिली, ब्लड में गई। अब वो ब्लड जिस समय 2 या 3 दिन तक रहा, इस्लाम की नजर से आप देखें तो आपने अगर किसी एक को खाना खिलाया, उस खाने से जो एनर्जी मिली वो 24 आवर्स उसकी बॉडी में रही ब्लड के ग्लूकोज की सूरत में, मान लेते हैं, उस दिन उस एनर्जी से जितनी नमाजें पढ़ेगा, जो नेकी का काम करेगा, जो मेहनत मजदूरी करेगा, उसमें आपका हिस्सा डल गया। इसलिए हुक्म है कि तुम्हारे घर से मुत्तकी खाएं। किसी की दावत करते हैं ना आप, किसी को इफ्तारी पे बुलाते हैं, तो खुद से सवाल करें, कितने लोग मेरे नफे के आएंगे, उस खाने के बाद जाके तरावियां भी पढ़ेंगे, अगले दिन फजर जमात से पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, और कम अज कम अगले दिन की इफ्तारी तक तो मेरे इस खाने की कुछ एनर्जी ब्लड में होगी ना। और कितने हैं जिन्होंने इधर से उठ के जाके ईशा भी नहीं पढ़नी, घर जाना है, और कितने बेरोजा आए हैं मेरे घर में। यकीन करें अगर ये हिकमत मिल गई ना तो हमारे खिलाने पिलाने के अंदाज ही बदल जाएंगे। इतनी वाजे हदीस है, ना खाएं तुम्हारे घर का खाना मगर मुत्तकी। कैसे मुत्तकी खाएगा, नेकी करेगा, नमाज रोजा जो उसकी जिंदगी के काम है तुम उसमें हिस्सेदार हो। तो अगर गुनाहगार और बेदीन और उस गुनाह से कोई उठ के तो अल्लाह ना करे किसी गुनाह की महफिल में गया तो आपका नेकी जाया हो गई। हर एक सोचे, चलिए अब इसको इतना तो समझ गया हम, इसके बरक्स आप इस चीज को ले लीजिए, आपने किसको खिलाया। अगली आयतों में थोड़ी सी बात हो रही है दीन के तालिब इल्मों की, वाक्य सुना देती हूँ तो फिर इंशाल्लाह आपको ज्यादा आसानी से बात समझ आएगी। कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो हॉस्टल में रहते थे, आज की जुबान में मस्जिद नबवी के, जिसको दारुल सुफा कहते थे। बाहर से दूर से गरीब इल्म सीखने के लिए आते थे, 70-80 के करीब लोग मौजूद थे और इससे भी ज्यादा रहे कुछ दौर में। मदीना के लोग क्या करते कि कुछ खाना उधर छोड़ देते, कभी खजूरें छोड़ देते, ये बेचारे उसको खा लेते तो पेट भर जाता। एक मौके पर किसी ने रद्दी किस्म की खजूरें भेजी, जिस पर ये आते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, ये नाजिल हुई। अब इसके अंदर क्या होता था कि वो लोग जो भी चीजें देते लेते वो खाते, क्योंकि ये बेचारे बाहर मेहनत मजदूरी के लिए जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि फुल टाइम स्टूडेंट्स थे, दीन सीख रहे थे और सिखा रहे थे, और ये स्टैंडिंग आर्मी भी थी। याद रखिए मुस्लिम हुकूमत में आर्मी या फौज एक डिफरेंट इशू नहीं है, हर फर्द सिपाही भी है, हर फर्द मुजाहिद भी है, क्योंकि हर फर्द कुरान का तालिब इल्म भी है। कितने खर्चे तो मुस्लिम हुकूमतों के वैसे ही कट डाउन हो जाते हैं जब आप लोगों को कुरान पढ़ाते हैं। जो बेहतरीन तरीके से कुरान पढ़ा हुआ शख्स जाकर जिहाद करेगा वो दूसरा कर सकता है। तो ये आमतौर पर पढ़ते रहते थे, जहां किसी जंग का मौका मिलता अल्लाह के नबी इनको सबको एक आर्मी बना के भेजते, और अंदर ईमान हो हाथ में तलवार हो तो कुफर छोटा वो बड़ा वो कट के गिर जाता है। आज आप जदीद वेपन्स दे दें और कानों में अगर गानों की हेडफोन लगे हुए और फिल्में देखते हुए उठ के जहाद के लिए जाएंगे तो ऐसे फौजियों से कौन डरेगा। तो बहरहाल हुआ क्या कि जिसने किसी तालिब इल्म को खिलाया, अब आप वही मिसाल लीजिए कि जिसकी मिसाल हमने ली कि आपने उसको खाना खिलाया 24 घंटे के लिए, उसके अंदर एनर्जी की, उसने उसमें सही बुखारी की एक हदीस याद की, कुरान की 3 आयतें पढ़ी, उसके ऊपर अमल किया, गौर किया, वो ताकत उसमें गई ना। उसने कोई एक ऐसा मसला सीख लिया जिसमें उसके बाद उसने सारी जिंदगी अमल करना है, तो आपके वो खाने की एनर्जी कहां तक चली गई, वो तो नस्लों में चली गई ना। इसलिए आज के दौर का बेहतरीन जिहाद जो है ना वो इल्म पे खर्च करना है। किस वजह से, क्योंकि लोग नहीं खर्च कर रहे, और दूसरी वजह क्या है कि इस नाते से हम अपने सदका जारिया को बढ़ाते हैं। तो हिकमत से जब काम किए जाते हैं अल्लाह ताला बहुत मदद करता है, वरना कोई किसान अपना बीज ऐसे ही नहीं फेंक देता फर्श पर के बीज ही नहीं होगा। कई लोग तो यकीन करें अपने सदका खिरात और जकात से जान छुड़ाते हैं, रात जाते पक फेंक आएंगे, वो पता चला उन्होंने उसका खाना खा के खत्म कर दिया। तो यहाँ जो हिकमत की बात पे इतनी लंबी चौड़ी बात की, इसलिए की है कि हिकमत होगी, 1 रुपया भी खर्च करेंगे ना तो अल्लाह के पास 100 खर्च करने का अजर होगा, और बाज दफा 100 करके भी हो सकता है हम सिर्फ 100 का अजर ले सके। अल्लाह ताला हम सबको कहते हैं वमान फक तुम मिन नफकत नौ नजर तुम मिन नजरें, तुमने जो कुछ भी खर्च किया हो और जो नजर भी मानी हो अल्लाह को इसका इल्म है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर अपने सदकात एलानिया दो तो ये भी अच्छा है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों का कि हम डोनेशंस देते हैं, सदका देते हैं तो क्या दिखा कर दें। अल्लाह कह रहे हैं बता के दो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अगर छुपा कर हाजतमंदों को दो तो ये तुम्हारे हक में बहुत ही बेहतर है। वजह क्या है आप समझ लीजिए, जब आप सदका दें यानी नफली सदका दें तो छुपा के दें, क्योंकि आपके अंदर ही ननक ही तकबर आ जाए कि बहुत सदका दिया और लोग के माशाल्लाह इतना बड़ा चेक दिया इन्होंने। और जब जकात दें जो आपकी जकात है तो वो सबके बीच में भी जाके दें कि जी ये जकात है ये मैंने देनी है, क्यों कि कहीं भूले में उनको भी याद आएगा, और आप दे रहे हैं तो किसी के जिम्मे आपकी बढ़ाई भी नहीं होगी। ये क्राइटेरियन समझ आ गया। फिर दोहरा देती हूँ, नफली सदका दे रहे हैं तो छुपा के दे, और फर्जी सदका दे रहे हैं तो जाहिर करें। दूसरी सूरत है किसी इंसान को दे रहे हैं, कोई गरीब है, मिस्कीन है, कुछ है, तो छुपा के दें ताकि उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। इसके बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, किसी स्कूल को दे रहे हैं, किसी भी ऐसे में दे रहे हैं तो खोल के दें, सामने दें, ताकि उसमें तो कोई इंसान नहीं होता। किसी के डोनेशन बॉक्स में आप डालते हैं तो वो किसी इंसान को तो नहीं मिलता। फायदा क्या होगा कि आपको देता देखकर दूसरों के भी दिल में ख्याल आएगा। तो ये क्राइटेरिया इन आयात में समझा दिया होगा क्या देने से। फरमाया वायु कब फिर अनको मिन सही जी आती कुम, और तुम्हारी बहुत सी बुराइयां इस तर्ज अमल से मिट जाती हैं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को बहरहाल इसकी खबर है। हदीस में आता है कि आसमान से इंसान के ऊपर एक मुसीबत आ रही होती है, इधर से उसका सदका जाता है, दोनों आपस में लड़ते हैं, और सदका स्ट्रांग है यानी अच्छी नीयत से दिया हुआ है दिल की खुशी से, तो उस मुसीबत को वापस ले जाता है। मुझे और आपको नहीं पता कि हमारे ऊपर कोई तकलीफ थी आई हुई, हमने कोई सदके में चीज डाल दी तो वो हमारी चली गई, रोड्स पे आते जाते कई लोग कहते हैं एकदम हादसा होते हुए बचा, तो मैं अक्सर मुस्कुराती हूँ, मैं कहती कोई ना कोई सदका काम आ गया होगा, कोई किसी को अच्छी बात कही होगी तो आ गई होगी। कुछ लोगों ने मजबूर करना चाहा कि हम इसलिए देंगे जब तक ये लोग नेक होंगे। बास लोग कहते हैं अच्छा तुम नेक होगी फिर तुम्हें जोड़ा दूंगी, नमाज पढ़ोगी तो जोड़ा दूंगी। अब वो मासी 2 दिन नमाजें पढ़ती है, बाजी मैंने नमाजें शुरू कर दी, आप उसको अच्छा सा जोड़ा देते हैं, 2-4 दिन बाद पूछे क्या नहीं बाजी कपड़े ही नहीं साफ रहते क्या पढ़ो। अल्लाह ने इसका जवाब दिया लैसा अलैका हुदा हुम। कुछ साहबा ने अपने नॉन मुस्लिम या गैर प्रैक्टिकल जो भी लोग थे उनको सदका देने से इनकार किया, कहा पहले मुस्लिम हो गए फिर देंगे, तो अल्लाह कहते इस तरह पैसों के लालच में इनसे नेकियां ना कराओ, ये फिर फर्क मिट जाएगा कि उनकी नीयत कैसी है। लोगों को हिदायत बख्श देने की जिम्मेदारी आप पर नहीं, हिदायत तो अल्लाह ही देता है जिसको चाहता और बख्शता है, और खैरात में जो तुम माल खर्च करते हो वो तुम्हारे अपने भले के लिए है, आखिर तुम इसीलिए तो खर्च करते हो कि अल्लाह की रजा हासिल करो। 3 सेकंड तक तदब्बुर करिए, है कोई इससे अलावा कोई इंटेंशन? सिर्फ इसलिए कि रब तू राजी हो जा, और जो कुछ माल तुम खैरात में खर्च करोगे इसका पूरा पूरा अजर तुमको दिया जाएगा और तुम्हारी हक तलफी ना होगी। मैं इस जुमले को पढ़ रही हूं ना तो मुझे ऐसे लग रहा है किसी बैंक की तरफ से ये स्टेटमेंट है कि आप जो चेक हमारे पास डिपॉजिट कराएंगे जब चाहे ले लें, है ना? ये ट्रस्ट अक्सर लोगों का पे चेक बैंक में जाता है, ऐसी है ना अमेरिका में, मुझे यहाँ का याद है अभी तक, बाकी मुल्कों में जाके कहती थी तो डाउट होता था कि वहां पता नहीं क्या है, लेकिन अब वो वापस सारी बातें मेरे जुबान पे आती हैं तो मैं यकीन से कहती हूँ कैसा ही है। भैया आप पूरा हफ्ता काम करते हैं, सुबह गए शाम तक रहे, पैसे आपने देखे भी नहीं, आपके ऑफिस वालों ने सीधे बैंक को दे दिए। क्यों भाई, आपका दिल नहीं करता कि आप $500 का नोट देखें, $1,000 देखें? किधर गया? बैंक में गया। क्यों गया? यकीन है जब जाएंगे कार्ड डालेंगे चेकबुक पे साइन करेंगे वो $500 मिल जाएगा, ट्रस्ट है ना? क्या इतना भी ट्रस्ट अल्लाह पे है मेरा? खुद से सवाल लिखे, ये तदब्बुर का नुक्ता है। जितना ट्रस्ट बैंक पे है कि मेरा पैसा जाया नहीं होगा, जब चाहूंगी मिलेगा, हालांकि शायद हर वक्त नहीं मिलता, संडे को क्लोज है या कुछ खास रिस्ट्रिक्शंस तो होंगी ना। मैं जब इधर थी तो मैं 1-2 दफा मैंने एक चीज किसी की देखी कि आप रात जाते गाड़ी में बैठ के भी पैसे ड्रॉप कर सकते हैं ना इधर। मैं सोचती थी कि पैसे लेने के लिए हर मुमकिन तैयार है। आधी रात को, बल्कि एक मौके पे ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड के पास कुछ कैश था तो वो एनवेलोप में डाल रहे थे, तो गिन के उस पर लिखना होता है और वो ड्रॉप करते हैं। आप जो अमेरिका में वो समझ रहे होंगे मेरी बात, तो मैंने कहा आपने गिना, कहते वो खुद ही गिन लेंगे। वो गिन के बाद में मैंने कहा अच्छा 1 दफा क्या लिखा, तो कुछ भी लिखा। मैंने कहा ये क्यों? क्या कहते जो गलती होगी वो बैंक वाले खुद ही बता देंगे। अंधा इतमाद, बस पैसे फेंको। वो कहते हैं हमें दे जाओ, हम खुद ही गिन के पैसे करके नोटों की गड्डियां बना के रखेंगे, इतमाद है। तो क्या एक मोमिन को इतना इतमाद अल्लाह पे नहीं है? कोई बैंक तो हो सकता है संडे को क्लोज हो, कभी कभी ATM मौजूद ना हो, वहां जा ना सके, और अल्लाह क्या कहता है, जो कुछ माल तुम खैरात में खर्च करोगे इसका पूरा पूरा अजर तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारी हक तलफी हरगिज ना होगी। आज पहला रोज है, हम में से कई जगह पे हमने नियत की थी कि हम जो भी सुनेंगे उस नियत करेंगे, तो मुझे लगता है कि अमल के नाते से सबसे आसान चीज वो माल देना है, क्योंकि शुक्र है शुरू में पर्दे की याद नहीं आ गई तो मसला हो जाता। और बहुत सारी बातें, कोई नियत कर ले, 5 पैनी किसी मस्जिद में रात को जाएंगे जहां डोनेशन बॉक्स दिखेगा यहाँ नियत कर ले, क्योंकि यहाँ भूखे लोग तो हमें दिख नहीं रहे, लेकिन कोई नियत छोटी सी कर ले, मैं भी करती हूँ आप भी, क्या? और अल्लाह को हम कहेंगे कि अल्लाह हमने इस आयत को पढ़कर कि तू जो भी हम खर्च करेंगे हमें पूरे का पूरा देगा, कमी नहीं करेगा, आयत 272 को, तो अल्लाह ताला हम इस पे ये खर्च कर रहे हैं, जो जिसकी औकात है करना चाहे कर ले, किसी का से अगर एक पैनी भी नहीं है तो कोई अच्छी बात किसी को सिखाने की नीयत कर ले कि अल्लाह ताला मके, क्योंकि इस एक्टिविटी से फायदा क्या होगा, अमल की आदत पड़ेगी, फिर ये कुरान यानी वर्सेस टू रीड नहीं होंगी बल्कि वर्सेस टू एक्ट अपॉन होंगी, और अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान कर दे। अब अगली आयतों में वही वाक्य जो मैंने हजरत अबू हुरैरा के नाते से आपको थोड़ा सा छेड़ा था, लिल फुकरा इल्लज़ीन उख्सिरू फी सबीलिल्लाही, खास तौर पर मदद के मुस्तहिक वो तंग दस्त लोग हैं जो अल्लाह के काम में ऐसे घिर गए कि अपनी जाती कस्बे माश के लिए जमीन में कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते, यानी फुल टाइम डिवोटर्स थे दीन के लिए, इल्म सीखने के लिए आए हुए थे, अबू हुरैरा भी थे और भी थे, आज भी ऐसे हजारों लोग होंगे, कमाना चाहें तो लाखों कमा लें, लेकिन फिर वो दीन को कैसे हेल्प करें, तो अल्लाह ताला कहते हैं इनकी खुददारी देख कर ना वाकिफ आदमी गुमान करता है कि ये खुशहाल है, इसको हाईलाइट करें। यहां मैं खास तौर पे, आप सब तो माशाल्लाह हमारे न्यू गेस्ट है ना, वो लोग जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे दीन को पेश कर रहे हैं, चाहे वो मस्जिद पाकिस्तान की कोई मस्जिद है जिसके कारपेट फटे हुए हैं, या वेस्ट में किसी चमकते दमकते इदारे को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं इस आयत को क्राइटेरियन बनाना चाहूंगी, और अपने प्लेटफॉर्म वालों के लिए भी, कि आप अपनी हैसियत से, अपने इदारे के गेटअप से, हाल हुलिये से कभी लोगों को ये ना दिखाएं कि वी आर हैंड टू माउथ लोग। हमारे घरों में खाना ना भी हो ना, तो मेहमान आ जाए ना, तो हम उसको भी अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, ऐसे ही है ना, घर जैसा भी हो लेकिन ड्राइंग रूम को सजा के रखते हैं कि मेहमान की इज्जत है। तो सवाल पैदा होता है कि दुनिया की इज्जत के तौर पे तो हम इतना भरम रखें, तो दीन के नाम पे हम क्यों ना भरम रखें? किसी दीन वाले को देखकर आपको ये फील नहीं होना चाहिए बेचारा। मैं ऐसी ऐसी जगहों को जानती हूँ कि वो सिर्फ इसलिए अपनी छतों को ठीक नहीं करवाते, कहते नहीं ये फटी हुई छतें देकर लोग चंदा ज्यादा देते हैं, तो वो ये भी तो कहेंगे ना कि इस मस्जिद में इतनी खस्ता हाली है, हमारा इधर फोकस नहीं होता, हम इधर तरावियां नहीं पढ़ते। मैं नहीं कहती कि इसराफ हो, मैं नहीं कहती कि एक बल्ब की जगह 10 बल्ब जले, लेकिन दीन का काम करने वालों को प्रेस्टीज के साथ काम करना चाहिए। आप घर में रो रहे थे, यहां आए तो मुस्कुराए, वहां आप गंदे मंदे थे, जब यहां आए तो साफ सुथरे लोगों को दिखे कि ये मुअज्जब लोगों की जगह है। आपके घर में गंद पड़ा हुआ, लेकिन दीन के इदारे में गंद नहीं दिखना चाहिए, उधर स्मेल हो सकती है खाने की, इधर फ्रेगनेंस होनी चाहिए, तब लोग इस दीन को काबिले इधर समझेंगे। आज आप देखिए हमारे माशरे के जो लोग हैं, जो बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं उनका स्टैंडर्ड क्या होता है, बेहतरीन इदारे हैं ना, यहाँ की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है आप देखें तो स्कूल्स हैं, बिग ह्यूज। आप वो स्कूल में गए जहाँ कंप्यूटर भी है और लैब्स भी हैं और डिसेंट है, आप उनको किसी ऐसी जगह सपारा पढ़ने भेजते हैं जहां से स्मेल आती है, वो जाएंगे? आज जरूरत है दीन के नाम पे ऐसे खूबसूरत, साफ सुथरे, खूबसूरत से मुराद फैंसी नहीं, साफ सुथरे रोशन ख्याल किस्म के लोगों को प्रेजेंट करने वाले इदारे कायम करने की, जिससे लोग भी गुजरे कि ये मुस्लिम का स्कूल है, ये मुस्लिम्स के बच्चों का, ये मुस्लिम लेडीज इधर बैठ के सीख रही हैं, फिर देखिएगा हमारा इस्लाम जिंदा होगा। अपने ऊपर से निकाल दीजिए इस रमजान में कसम पुरसी का हालत, और कुछ मुश्किल लफ्ज और भी होते हैं उर्दू में, बोलिए जरा, बेचारगी निकालिए। हम नहीं बेचारे, हम नहीं भूखे, हमें नहीं चाहिए पैसा, हमें तुम्हारा चंदा नहीं चाहिए, हाँ तुम दोगे, तुम्हारे पास प्रोजेक्ट बहुत है, तुम्हारे माल की हिफाजत होगी, तुम्हारा पैसा लगेगा, लोगों को ये ट्रस्ट दे दीजिए, देखिए फिर लोग कितना देते हैं। मैं हैरान होती हूँ जब लोग फंड रेजिंग में लोगों की इज्जत तक पामाल कर देते हैं कि देंगे नहीं तो खाना नहीं खुलेगा, ये भी अमेरिकन कल्चर वाले अच्छी तरह जानते हैं। एक आध दफा इत्तफाक हुआ जहां जाने का, यकीन करे मेरा दिल करे इनको, मैं को सारा हमसे ले लो, जान छोड़ो इनकी, दरवाजे बंद हैं, हम नहीं जाने देंगे, खाना नहीं खुलेगा, 12 बज रहे हैं, गाड़ियां हॉर्न है, नहीं जब तक आज का गोल पूरा नहीं करेंगे तो देंगे। यकीन कीजिए 13 साल मक्का के तो छोड़ने, 10 साल मदनी दौर है, मस्जिद नबवी भी बनी थी। ये आपको नहीं कह रही कि अब ये मेरा जुमला बाहर जाके अब लोगों के फंड रेजिंग हराम है और गलत है, मैंने कुछ नहीं कहा, जैसे लोग होते हैं फिर ऐसे ही होता है, सीधी उंगलियों से घी ना निकले तो टेढ़ी से तो निकलेगा। मैं तकाबुल कर रही हूं कि पिछले दौर के लोग ले लेके फिरते थे, कि अबू बकर जब घर लेके आगे सामान तो कहा अबू बकर पीछे क्या छोड़ा है, कुछ पीछे के लिए भी छोड़ देते, वो कहते थे ले हमसे ले, आज हम कहते हैं दो, हमने हाथ फैलाए हुए लोगों के आगे, कहा से बेकारी, और हम कहते हैं हमें दो, और नहीं दोगे तो हमारा ये काम रुकेगा। भाई हमारा कोई काम नहीं रुकता, हमें जो पता है वो कर रहे हैं, तुम्हें जरूरत है अपना हिस्सा डालने की, लाओ इस कमरे में जगह नहीं बड़ी कर लो, तुम बड़ा बना लो, तुम खुला कर लो, तुम इधर नहीं, तुम दूर नहीं, करीब नहीं आ सकते, कर लो, तुम्हारी मर्जी है, दीज आर सर्विसेज, बट वी कैन आस्क फॉर मनी। जब आप इस तरह से दीन को फैलाएंगे ना, तो देखिएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। अल्लाह से दुआ कीजिए आज हमारा दीनदार तबका दीन की इज्जत कायम रखे। कभी आपने किसी को कहा कि मेरे घर आए हो, इतना टेबल लगा, जाते हुए जाके कि प्लीज डोनेशन, प्लीज आज के खाने पे $200 लग गया, तो आप इतनी भारी तारियां क्यों खिलाते हैं लोगों को उसके बाद, अगर आपने डोनेशन मांगनी है खुद कोई देते खिलाएं, मांगे कभी ना, सर्विसेस ऑफर करें, आप रखें बॉक्सेस भी रखें, ज़कात का बॉक्स भी रखें डोनेशन करके, लेकिन लोगों की इज्जत ना हर्ट करें। क्यों? कि आज कई मर्द हैं जिन्होंने जाना तो वैसे भी नहीं था, सच्ची बात है, लेकिन वो अपनी बीवियों को क्या कहते हैं, हमने नहीं जाना, जब मौलवी साहब हमें देखते हैं तो वो डोनेशन की बात करते हैं, सारा खुतबा जो है वो चंदे से शुरू होता है, चंदे पे खत्म होता है। मैं ऐसी जगह एक जगह जुमे के लिए गई कि जुमा हमने जो देखा हुआ पढ़ा है हदीस में, हमें बताया जुमे के उत्तमे में बोलो भी ना, जिसने किसी को चुप कराया तो उसमें भी उसका अजर जाया हो गया, और वहां वो खुतबा देने के बाद नमाज ही नहीं शुरू कर रहे। वल्लाही अल्लाह मुझे एग्जैजुरेशन से बचाए, कोई गलती हो तो अल्लाह मुझे भी रोक ले, जुमे की नमाज और खुतबे के बीच में डोनेशन बॉक्स फिर रहे हैं, पहले चंदा सारा देंगे तो फिर जुमा पढ़ाएंगे, है ना लोगों को ब्लैकमेल करने वाली बात, क्योंकि लोगों को पता है जुम्मा तो उन्होंने मस्जिद में आके पढ़ना है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए इस दीन की इज्जत अल्लाह हमसे करा ले, बावकार अंदाज में आया करें दीन के लिए, मुहज्जब डिसेंट खूबसूरत तरीके से इस दीन को दिखाएं, तो दूसरे भी देखेगा इंशाल्लाह इस इस्लाम की इज्जत करेंगे। जिसकी इज्जत घर वाले नहीं करते उसकी बाहर कौन करेगा। हम मुसलमान नहीं अपने दीन की इज्जत करते तो हमारी इज्जत दूसरों ने कहां करनी है।